नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि श्रीनगर जिले में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार करती है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 लापता हो गया। आईएमडी ने आज राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दुनिया भर में बाघ संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के पास से 3 राइफल जब्त की गई जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में किया गया था। श्री शाह ने बताया है कि तीनों आतंकवादियों सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया गया है। श्री शाह ने जोर देकर कहा है कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया था कि वे पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को देश छोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने देश के सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया और उनके शिविरों को सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ध्वस्त कर दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के सुरक्षा बलों ने न केवल आतंकवादियों का सफाया किया बल्कि उन्हें भेजने वाले को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन लश्कर ए तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली उसी दिन सरकार ने देश के सशस्त्र बलों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। श्री शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की आलोचना की है। उन्होंने आतंकवादियों के पाकिस्तान से होने का सबूत मांगा और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की दिशा निर्देश जारी की। चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके के कनिमोझी ने कहा कि श्री शाह ने विपक्ष की आलोचना की और ऐसे दिखाया कि वे कम देशभक्त है, लेकिन डीएमके ने भी देश को निराश नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया था। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। उपसभापति ने कहा है कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों से विभिन्न मुद्दों पर 24 संस्थागत प्रस्ताव मिले थे, लेकिन संसदीय का हवाला देते हुए उन्हें खारिज कर दिया गया। शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 246 मिलियन टन से बढ़कर आज 353 मिलियन टन हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि दालों का उत्पादन भी 2013-14 से 16 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन से अधिक हो गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख की फिडे महिला शतरंज विश्वकप 2025 जीतने पर सराहना की। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दिव्या देशमुख ने टूर्नामेंट जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा है कि दिव्या ने कम उम्र में ही अद्भुत कौशल और दृढ़ता का परिचय दिया और उनकी यात्रा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्या देशमुख की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश उनकी जीत से उत्साहित है। उन्हें इस जीत पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि फिडे महिला शतरंज विश्वकप की दोनों फाइनलिस्ट भारतीय महिलाएं थीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विश्व स्तर की शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देश ढांचे के रूप में कार्य करती है और ये विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बन गई है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हादसे को दुखद बताया। श्री मोदी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। झारखंड ने आज सुबह देवघर हंस हिदाही मार्ग पर मोहनपुर प्रखंड में जमुनिका चौक के पास एक बस और ट्रक के आमने सामने से टकराव के कारण देवघर में जा रहे चार कावड़ियों के मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई को ओडिशा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल की लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों में मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम मारक क्षमता को सटीकता से प्रमाणित किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय एक स्वदेशी ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन का उपयोग करती है। इस मिसाइल में विभिन्न लक्ष्यों पर कई प्रकार के आयुध के लिए जाने की सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार के कल प्रक्षेपण की 27 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती आज दोपहर 2:10 पर भारतीय समय अनुसार शुरू हो गया है। निसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका राष्ट्रीय विमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा का पहला संयुक्त उपग्रह मिशन है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रात भर हुई भारी बारिश के बाद जल रोड पर बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 1 लोग लापता है। इस बाढ़ से व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है जिससे बुनियादी ढांचे पर बुरा असर पड़ा और कई इलाके अथल पुथल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज पूर्वी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में भारी मानसूनी बारिश हो रही है जिससे सभी नदियां उफान पर हैं। राज्य में इस मौसम की 70% बारिश हो चुकी है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, ईस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और दुनिया भर में संरक्षण प्रयासों के प्रति जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 11 नए बाघ अभयारण्य जोड़े गए हैं जिनकी संख्या 2014 में 47 से बढ़कर अब 58 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन पर भी काम कर रहा है जिसका उद्देश्य 97 देशों की दुनिया की 7 प्रमुख बाघ प्रजातियों का संरक्षण करना है। और थाईलैंड और कंबोडिया के सैन्य कमांडरों ने आज बातचीत की। दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद 5 दिनों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथन वेचायचायाट फुमथंग ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानित के से कल मलेशिया में मुलाकात की और 5 दिनों से चल रहे संघर्ष को रोकने पर सहमत हुए। विस्थापित निवासियों को धीरे धीरे घर लौटना शुरू हो गया है। इस युद्ध में लगभग 38 लोग मारे गए और 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।